आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। इंतखाबी कमीशन आज आसाम, केरलम और पुडुचेरी में असेंबली इंतखाबात के लिए नोटिफिकेशन जारी करेगा। कमीशन ने मगरबी बंगाल में इंतजामिया में बड़े पैमाने पर तब्दीली की है। दुष्यंत नरियाला को नए चीफ सेक्रेटरी के तौर पर मुकर्रर किया गया है। ओडिशा के कटक जिले में आज सुबह SCB मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के ICU में आग लगने के सबब 10 अफराद हलाक हो गए। एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस मगरबी एशिया में बढ़ती हुई कशीदगी के दौरान आज 48 परवाजें चलाएगी। बैनुल अक्वामी तवानाई एजेंसी के रुकन ममालिक तेल की आलमी कीमतों से निमटने के लिए हंगामी तौर पर बड़ी मकदार में तेल जारी करेंगे। और लॉस एंजलिस में 98वें एकेडमी अवार्ड्स का ऐलान कर दिया गया है। वन बैटल आफ्टर अनदर फिल्म ने बेस्ट पिक्चर का अवार्ड हासिल किया है। अब खबरें तफसील से। आसाम, केरलम और पुडुचेरी असेंबली इंतखाबात के लिए नोटिफिकेशन आज जारी किया जाएगा। इससे पहले भारत के इंतखाबी कमीशन ने कल ऐलान किया कि आसाम, केरलम, पुडुचेरी और तमिलनाडु में वाहिद मरहले में जबकि मगरबी बंगाल में दो मरहलों में इंतखाबात कराए जाएंगे। नई दिल्ली में कल इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान करते हुए चीफ इंतखाबी कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने कहा कि आसाम, केरलम और पुडुचेरी में 9 अप्रैल को जबकि तमिलनाडु में 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। मगरबी बंगाल में दो मरहलों में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। पहले मरहले में रियासत के 152 और दूसरे मरहले में 142 असेंबली हलकों का अहाता किया जाएगा।
126 असम की 126 विधानसभा सीटों, केरल की 140 सीटों और पुदुचेरी के 30 सीटों पर एक चरण में 9 अप्रैल को मतदान होगा। तमिलनाडु की 234 सीटों पर एक ही चरण में 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। वहीं पश्चिम बंगाल में दो चरणों में 152 सीटों पर 23 अप्रैल को और 142 सीटों पर 29 अप्रैल को मतदान होगा।
सभी चार रियासतों और मरकज के जिले इंतजाम इलाके में वोटों की गिनती 4 मई को होगी। तमिलनाडु असेंबली इंतखाबात और मगरबी बंगाल के पहले मरहले के लिए नोटिफिकेशन 30 मार्च को जारी किया जाएगा। मगरबी बंगाल पोलिंग के दूसरे मरहले के लिए 2 अप्रैल को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। चीफ इंतखाबी कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने कहा कि असेंबली इंतखाबात के शेड्यूल के ऐलान के साथ ही सभी चार रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाके में मिसाली जाब्ता अखलाक फौरी तौर से नाफिजुल अमल हो गया है। वोटर फहरिस्तों की खसूसी तफसीली नजरसानी SIR पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब कुमार ने कहा कि आईन की दफा 326 के तहत ये मश्क अंजाम दी जा रही है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि कोई भी अहल वोटर बाहर ना रहे और कोई ना अहल शख्स वोटर फहरिस्त में शामिल ना हो जाए।
संविधान के अनुच्छेद 326 के अंतर्गत विशेष गहन पुनरीक्षण किया जा रहा है। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि कोई भी पात्र मतदाता छूट न जाए और कोई भी अपात्र मतदाता सूची में शामिल न हो। इस कार्य के सुचारू संचालन और सफल समापन में शामिल सभी चुनाव अधिकारियों को मैं बधाई देता हूँ।
असेंबली इंतखाबात के कल के ऐलान के बाद पुडुचेरी के 30 असेंबली हलकों के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का अमल आज से शुरू हो गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर की जानिब से अवामी नुमाइंदगी के कानून के तहत गैजेट नोटिफिकेशन जारी होने के बाद नामजदगी दाखिल करने का अमल बाजाब्ता तौर पर शुरू हो जाएगा। उम्मीदवार आज से 23 मार्च तक पुडुचेरी में नामजद 17 रिटर्निंग अफसरान के पास अपने कागजात नामजदगी दाखिल कर सकते हैं। उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी ऑनलाइन तरीके से भी दाखिल कर सकते हैं, ताहम उन्हें बाद में अपनी दरख्वास्तों की प्रिंटेड नकल बजात खुद रिटर्निंग अफसरान के पास जमा करानी होगी। दरख्वास्तों की जाँच 24 मार्च को होगी और 26 मार्च तक उम्मीदवारी वापस ली जा सकती है। पुडुचेरी कानून साध असेंबली के लिए 9 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे जबकि वोटों की गिनती 4 मई को होगी। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
पुडुचेरी के चीफ इंतखाबी अफसर पी जवाहर ने सियासी जमातों से मिसाली जाब्ते अखलाक की पासदारी करने और आजादाना, मुनसिफाना और पुरअमन इंतखाबात के इनेकाद के लिए मुकम्मल तआवुन की दरख्वास्त की है। कल मीडिया से बात करते हुए उन्होंने यकीन जाहिर किया कि इस मरतबा 90% से ज्यादा रायदेही के साथ पुडुचेरी मिसाली मरकज के जेर इंतजाम इलाके के तौर पर उभरेगा। साल 2021 में पुडुचेरी में 82% पोलिंग दर्ज की गई थी। जनाब जवाहर ने बताया कि ताजा आदाद व शुमार के मुताबिक पुडुचेरी में राय दहिंदगान की मजमू तादाद 948,977 है। जिसमें 4,45,761 मर्द वोटर्स और 5,03,076 खवातीन वोटर्स हैं। 140 वोटर्स का ताल्लुक तीसरी जिन्स से है। चीफ इंतखाबी अफसर ने राय दहिंदगान से दरख्वास्त की है कि वो मिसाली जाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी से मुतालिक शिकायत के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1950 या सी विजिल मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जनाब जवाहर ने मजीद कहा कि राय दहिंदगान ईसीआई नेट प्लेटफॉर्म पर नो योर कैंडिडेट सहूलत का इस्तेमाल करते हुए उम्मीदवारों के पस मंजर के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। पुडुचेरी से बिपिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
इंतखाबी कमीशन ने इतवार को ऐलान किया है कि आसाम में असेंबली इंतखाबात 9 अप्रैल को होंगे जबकि वोटों की गिनती 4 मई को होगी। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
इंतखाबी कमीशन आसाम असेंबली चुनाव के लिए नोटिफिकेशन आज जारी करेगा। 126 सीटों में से 9 सीटें दर्ज फहरिस्त जातों जबकि 19 सीटें दर्ज फहरिस्त कबाइल के लिए मुख्तस हैं। 2,50,00,000 राय दहिंदगान हैं जबकि 31,486 पोलिंग मरकजों पर वोट डाले जाएंगे। गुवाहाटी से अमीनुल हक जोहादर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
इंतखाबी कमीशन ने 6 रियासतों के 8 असेंबली हलकों के जिमनी इंतखाबात का भी ऐलान कर दिया है। ये असेंबली हलके हैं गोवा की पोंडा सीट, गुजरात में उमरेट, कर्नाटक में बागलकोट और देवानगिरी, महाराष्ट्र के राहुरी और बारामती, त्रिपुरा के धर्मानगर और नागालैंड के कोरीडांग। चीफ इंतखाबी कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने कल शाम नई दिल्ली में एक अखबारी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि गोवा, कर्नाटक, नागालैंड और त्रिपुरा के जिमनी इंतखाबात के लिए नोटिफिकेशन आज जारी किया जाएगा और वोटिंग 9 अप्रैल को होगी। गुजरात और महाराष्ट्र के जिमनी इंतखाबात के लिए 30 मार्च को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा जबकि 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। जनाब कुमार ने मजीद कहा कि वोटों की गिनती 4 मई को होगी। भारत के इंतखाबी कमीशन ने मगरबी बंगाल में रियासत इंतखाबात के ऐलान के बाद रियासत के सीनियर अफसरान के तबादलों का ऐलान किया है। अपने खत में कमीशन ने कहा कि उसने रियासती कानून साज असेंबली के आम इंतखाबात की पोलिंग की तैयारियों का जायजा लिया है और तबादलों के अहकाम दिए हैं। इंतखाबी कमीशन ने यह भी हिदायत दी कि रियासती हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी के तौर पर नंदनी चक्रवर्ती की जगह दुष्यंत नरयाला का तकरर किया जाए। मोहतरमा संगमित्रा को मगरबी बंगाल हुकूमत की दाखिली और पहाड़ी इलाकों की प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर मुकर्रर किया गया है। इंतखाबी कमीशन के सेक्रेटरी सुजीत कुमार मिश्रा ने कहा कि कमीशन के अहकाम फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होंगे और मजकूरा अफसरान के रुजू होने से मुतालिक तामील पर मबनी रिपोर्ट आज सपहर 3 बजे तक भेजी जानी है। इसके अलावा खत में कहा गया है कि तबादला किए गए अफसरान को इंतखाबात की तकमील तक इंतखाबात से मुतालिक किसी भी ओहदे पर फायज न किया जाए। बीजेपी सदर नितिन नवीन ने कहा है कि एनडीए और बीजेपी कारकुन आने वाले इंतखाबात के लिए पूरी तरह तैयार हैं। 4 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम एक इलाके के इंतखाबात की तारीखों के ऐलान के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में जनाब नवीन ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में एनडीए एक बार फिर आसाम और पुडुचेरी में हुकूमत बनाने वाला है। जनाब नवीन ने कहा कि आवाम के आशीर्वाद से मगरबी बंगाल, तमिलनाडु और केरलम में भी एनडीए की जीत का रास्ता हमवार हो रहा है। बिहार, ओडिशा और हरियाणा में राज्यसभा की 11 सीटों के लिए आज पोलिंग होगी। 26 रहनुमा बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं। इंतखाबी कमीशन ने गुज़िश्ता महीने 10 रियासतों में राज्यसभा की 37 सीटों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था। हमारे पटना के नामानिगार ने तला दी है कि बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों के लिए वोटिंग होगी। ओडिशा में राज्यसभा के 4 मेंबरान के इंतखाब के लिए वोटिंग होगी जिसमें 5 उम्मीदवार मैदान में हैं। हरियाणा में राज्यसभा के लिए 2 सीटों पर इलेक्शन हो रहा है। लोकसभा में आज रेलवे की वजारत के साल 2026-27 के मुतालबात जर पर गौर खौज और वोटिंग की जाएगी। इसके अलावा ज़राअत और किसानों की बहबूद की वजारत से मुतालिक साल 2026-27 के तहत मुतालबात जर पर गौर खौज भी किया जाएगा। राज्यसभा में तख़सीस के बिल 2026 पर गौर खौज किया जाएगा और इसे वापस लोकसभा भेजा जाएगा। इस बिल के तहत माली साल 2025-26 की खिदमात के लिए भारत के कौमी खजाने से कुछ मदों के तहत तख़सीस और अदायगी की जा सकेगी। ओडिशा में आज सुबह सवेरे कटक के SCB मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के ट्रॉमा केयर सेंटर में बड़े पैमाने पर आग लग जाने के सबब कम अज कम 10 अफराद हलाक हो गए। अस्पताल के अमले के तकरीबन 11 अराकीन मरीजों को बचाते हुए मुतासिर हुए हैं। अफसरान ने बताया कि ये आग आज सुबह तकरीबन 3 बजे लगी। शक है कि आग का यह हादसा शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ। वजीर आला मोहन चरण मांझी ओडिशा के वजीर सेहत मुकेश महालिंग के साथ जाए हादसे पर पहुंचे और सूरत हाल का जायजा लिया। وزیر اعلیٰ نے مرنے والوں کے کنبوں کے لیے 25-25 لاکھ روپے کی امدادی رقم کا اعلان کیا ہے اور افسران کو ہدایت دی ہے کہ وہ زخمیوں کا مناسب طور پر علاج کرائیں۔ مرنے والوں میں زیادہ تر وہ مریض تھے جو آئی سی یو میں داخل تھے۔ اس حادثے کے دوران آگ سے حفاظت کا نظام فعال کر دیا گیا ہے اور آگ بجھانے والی 3 گاڑیوں کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ خبرنامہ آکاش وانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ امریکہ کی وسطی کمان نے کہا ہے کہ ایران کی فوجوں نے پڑوسی ملکوں پر ہزاروں ڈرون اور میزائل حملے کیے ہیں، جن میں ہوٹلوں، کمرشل ہوائی اڈوں، رہائشی علاقوں اور معاشی بنیادی ڈھانچے سمیت بہت سے شہری مقامات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ امریکہ کے حملہ آور ڈرونز کو صرف ایران کی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا کہ ایران کو کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ وہ امریکہ کے ساتھ بات چیت کرے۔ جناب عراقچی نے کہا کہ ایران نے نہ تو کسی سمجھوتے کی خواہش کا اظہار کیا ہے اور نہ ہی کسی بات چیت کا۔ ایران نے اس طرح کے دعووں کو محض مغالطہ قرار دیا ہے۔ اسرائیل، امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ کے بعد مغربی ایشیا میں کشیدگی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ایئر انڈیا اور ایئر انڈیا ایکسپریس آج سے خطے کے لیے آنے اور جانے والی 48 پروازیں چلائے گی۔ ان میں بھارتی شہروں اور جدہ کے درمیان 10 پروازوں اور مسقط سے آنے اور جانے والی 12 پروازیں شامل ہیں۔ ایئر انڈیا نے ایک پریس ریلیز میں کہا ہے کہ وہ دلی اور ممبئی سے واپسی والی ایک پرواز چلائے گی، جبکہ ایئر انڈیا ایکسپریس بنگلورو، کوزی کوڈ اور منگلورو سے ایک ایک پرواز چلائے گی۔ ایئر انڈیا ایکسپریس مسقط سے بھی آنے اور جانے والی 12 پروازیں چلائے گی، جس میں سے دلی، کنور، ممبئی اور ترووننتپورم سے آنے اور جانے والی 1 پرواز اور کوچی سے 2 پروازیں شامل ہیں۔ اسپائس جیٹ بھی متحدہ عرب امارات کے فجیرہ سے بھارت کے لیے خصوصی پروازیں چلائے گی۔ وہ دلی سے پونے تک کے لیے بھی ایک خصوصی پرواز چلائے گی۔ دوحا میں بھارتی سفارت خانے نے اعلان کیا ہے کہ قطر ایئر ویز بھارت کے لیے اگلے 2 دن میں مزید 3 پروازیں چلائے گی۔ یہ پروازیں نئی دلی، ممبئی اور کوچی کے لیے چلائی جائیں گی۔ سفارت خانے نے کہا ہے کہ وہ پھنسے ہوئے بھارتی شہریوں اور ایمرجنسی معاملات میں مدد کے لیے مقامی حکام اور قطر ایئر ویز کے ساتھ رابطہ رکھے ہوئے ہے۔ ان میں سلوا سرحد سے سعودی عرب کے راستے 96 گھنٹے کے عارضی ٹرانزٹ ویزا کے ذریعے سفر بھی شامل ہیں۔ بین الاقوامی توانائی ایجنسی IEA نے کہا ہے کہ اس کے رکن ممالک تیل کی عالمی قیمتوں میں کمی لانے میں مدد کے لیے ہنگامی ذخیروں سے بڑی مقدار میں تیل جاری کریں گے۔ لاس اینجلس میں ڈولبی تھیٹر میں 98ویں اکیڈمی ایوارڈز کی تقریب اختتام پذیر ہوئی۔ بیسٹ پکچر کا ایوارڈ ون بیٹل آفٹر اندر کو دیا گیا۔ اس فلم نے 13 نامزدگیاں حاصل کی تھیں اور مجموعی طور پر 6 ایوارڈز جیتے تھے۔ یہ تھیں خبریں اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں اسد اللہ۔
شکریہ ضمیر۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخباروں نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ انقلاب، پرتاب اور ہندوستان ایکسپریس سمیت آج کے سبھی اخباروں نے انتخابی کمیشن کی طرف سے 5 ریاستوں میں اسمبلی انتخابات کی تاریخوں کا اعلان کیے جانے کی خبر کو صفحہ اول پر شائع کرتے ہوئے لکھا ہے، یہ چناؤ 9 اپریل سے 29 اپریل کے درمیان کرائے جائیں گے، جبکہ ووٹوں کی گنتی 4 مئی کو ہوگی۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر اے جے شنکر نے یورپی یونین کے اپنے ہم منصبوں سے ملاقات کی۔ اس ملاقات کا مقصد یورپی شراکت داروں کے ساتھ بھارت کی شمولیت کو مزید مضبوطی فراہم کرنا ہے۔ اس خبر کو پرتاب نے صفحہ اول پر نمایاں کیا ہے۔ روزنامہ ہندوستان ایکسپریس کی سرخی ہے، ایران سے بھارتی طلبہ کے پہلے قافلے کی آمد، طلبہ نے بھارتی حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ پر حملے کی تحقیقات کے لیے جموں کشمیر پولیس نے 7 رکنی خصوصی تحقیقاتی ٹیم تشکیل کی۔
اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ انتخابی کمیشن آج آسام، کیرلم اور پڈوچیری میں اسمبلی انتخابات کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کرے گا۔ کمیشن نے مغربی بنگال میں انتظامیہ میں بڑے پیمانے پر تبدیلی کی ہے۔ دشینت نریالا کو نئے چیف سیکرٹری کے طور پر مقرر کیا گیا ہے۔ اوڈیشہ کے کٹک ضلع میں آج صبح SCB میڈیکل کالج اور اسپتال کے ICU میں آگ لگنے کے سبب 10 افراد ہلاک ہو گئے۔ ایئر انڈیا اور ایئر انڈیا ایکسپریس مغربی ایشیا میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے دوران آج 48 پروازیں چلائے گی۔ بین الاقوامی توانائی ایجنسی کے رکن ممالک تیل کی عالمی قیمتوں سے نمٹنے کے لیے ہنگامی طور پر بڑی مقدار میں تیل جاری کریں گے۔ اور لاس اینجلس میں 98ویں اکیڈمی ایوارڈز کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ ون بیٹل آفٹر اندر فلم نے بیسٹ پکچر کا ایوارڈ حاصل کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے یہ خبرنامہ ختم ہوا۔